वहीं दूसरी तरफ इप्सिता अपने कमरे में उठकर तैयार हो चुकी थी और वो सबसे पहले कमरे से बाहर निकली। वो ब्रेकफास्ट टेबल पर आकर बैठ गई। नंदिनी की माँ इप्सिता पर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, ठीक हो ना तुम इप्सिता बेटा? इप्सिता ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ आंटी मैं ठीक हूँ और आपकी हेल्प कर दूँ? नंदिनी की माँ ने तुरंत ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, अरे नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ऑलमोस्ट सारा नाश्ता बना लिया है मैंने, तुम तो बस खाना शुरू करो, बस ये कटलेट फ्राई कर देती हूँ जल्दी से, ये गर्म ही अच्छे लगते हैं इसलिए। इतना बोलकर नंदिनी की माँ बचा हुआ नाश्ता तैयार करने लगी। उन्होंने भले ही मना किया था लेकिन फिर भी इप्सिता वहाँ किचन में आ गई और उनकी मदद करने लगी। उसे अच्छा नहीं लगता था कि वो सबके लिए खाना नाश्ता सब कुछ बनाती थी, इसलिए उसे जब भी मौका मिलता था वो उनकी मदद ज़रूर करती थी किचन में। सब कुछ बन जाने के बाद वो पूरा नाश्ता प्लेट में सर्व करने लगी तो इप्सिता ने कहा, उदय भाई और नंदिनी को आने देते हैं, उसके बाद साथ में स्टार्ट करेंगे। इप्सिता ने इतना ही बोला था कि तभी नंदिनी कमरे से बाहर निकल आई। इप्सिता तब तक अपनी कॉफ़ी लेकर डाइनिंग टेबल की एक कुर्सी पर बैठ गई थी और नंदिनी भी उसके बगल में आकर बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद उदय भी वहां आया और वो भी चुपचाप डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। नंदिनी और इप्सिता धीरे धीरे आपस में कुछ बात कर रही थी और उदय ने उन दोनों से कोई बात नहीं की। थोड़ी ही देर में वे सब नाश्ता करने के बाद अपने अपने ऑफिस की तरफ निकल गए। इप्सिता और नंदिनी कार में थीं, तभी इप्सिता ने अपने हाथ में पड़ी फाइल की तरफ देखा और तभी नंदिनी ने कहा, क्या सोचा है ईशु, बॉस से क्या बात करेगी तू? नंदिनी की ये बात सुनकर इप्सिता ने कहा, कुछ नहीं, अभी तो फिलहाल ये कॉन्ट्रैक्ट वाली ही बात करूंगी, बाकी अगर उन्होंने और कुछ पूछा तो फिर देखती हूँ फिर क्या जवाब देना है। नंदिनी इप्सिता की ये बात सुनकर चुपचाप गाड़ी चलाने लगी और थोड़ी ही देर में वे लोग सीधे स्टूडियो पहुंच गए। नंदिनी जैसे ही स्टूडियो पहुंची वहां पर उसकी दो तीन असिस्टेंट एक साथ आईं और उन्होंने कहा, नंदिनी मैम प्लीज आप जल्दी चलिए, हमें आज बहुत सारा काम करना है, एक एक्स्ट्रा शो है उसके लिए भी। नंदिनी ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, तुम लोग चलो मैं बस आ रही हूँ। हाँ ईशु, तुम किसी भी चीज़ को लेकर बिल्कुल भी टेंशन मत लेना और वैसे भी बॉस से इतनी इम्प्रेस है कि मुझे नहीं लगता वो तुझे कोई ज्यादा सवाल जवाब करेंगे। इप्सिता ने धीरे से अपना सिर हिलाया और वो अथर्व के केबिन की तरफ बढ़ गई। नंदिनी वहां से सीधे अपने मेकअप डिपार्टमेंट की तरफ चली गई। इप्सिता जैसे ही अथर्व के केबिन के सामने गई उसने केबिन पर नॉक किया और केबिन के अंदर से अथर्व की आवाज़ आई, कम इन। इप्सिता ने केबिन का दरवाजा खोलकर अंदर गई और उसने देखा अथर्व सामने रखी कई सारी मैगजीन्स को देख रहा था जिसमें से ऑलमोस्ट सारी मैगजीन्स के कवर पर न्यू मॉडल थीं। लेकिन उसकी ठीक सामने जो मैगजीन रखी थी उस पर इप्सिता की फोटोज थीं और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो उस कवर पर बनी सारी मॉडल्स को कंपेयर कर रहा हो। इप्सिता आगे आई और उसने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग अथर्व सर। अथर्व इप्सिता की तरफ देखकर धीमी आवाज में बोला, गुड मॉर्निंग। इतना बोलकर उसने अपना सिर वापस नीचे की तरफ झुका लिया और बाकी सारी मैगजीन्स को अपने सामने से हटाने लगा। तभी इप्सिता ने कहा, वो मुझे आपसे इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ बात करनी थी। अथर्व ने चेयर की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठो। अथर्व बहुत ही नॉर्मली बिहेव कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो और इप्सिता उसके बिहेवियर को देखकर अपने मन में बोली, ये अथर्व सर इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा था वो मुझसे नाराज होंगे या फिर मुझे कुछ सवाल जवाब पूछेंगे, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं बोल रहे। वैसे अच्छा ही है अगर वो प्रोफेशनल बिहेव कर रहे हैं, उन्हें वैसे भी हमारी पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ नहीं बोलना चाहिए था, उस दिन भी सर ने शायद ज्यादा रिएक्ट किया था, अभिमन्यु सही कह रहे थे। इप्सिता के दिमाग में ये बात चल ही रही थी तभी उसने चेयर आगे खिसकाई और चुपचाप अथर्व के सामने आकर बैठ गई। उसने फाइल को अथर्व के सामने रखते हुए कहा, एक्चुअली सर हमें इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंज चाहिए। अथर्व ने धीरे से अपना सिर हिलाया और इप्सिता ने कहा, हमें 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए और कुछ चीज़ें हैं जो हमें ठीक नहीं लग रही थी तो हमने उन्हें मार्क कर दिया है, तो प्लीज़ अगर वो सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। इप्सिता बोल ही रही थी कि तभी अथर्व ने कहा, ठीक है मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज करवा दूंगा, उसके बाद ही तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, वैसे भी मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम तो यहाँ पर ही काम कर रही हो ना, और कुछ कहना है तुम्हें? इप्सिता ने नामे अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बस वो कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी, और हम जानते हैं कि हमारे फ्रेंड को आपसे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी, उन्होंने काफी रूड बिहेव किया लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आप वहां पर आकर हमसे ऐसे सवाल करेंगे, शायद इसीलिए। इप्सिता अभिमन्यु को लेकर सफाई दे रही थी तभी अथर्व ने कहा, उस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी इप्सिता, वैसे भी वो तुम्हारा पर्सनल मैटर है, सो डोंट वरी, मैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछ रहा था, और कुछ चेंज करवाना है तुम्हें? इप्सिता ने नामे अपना सिर हिलाते हुए कहा, जितने चेंज थे वो हमने करवा दिए हैं, आप बस एक बार देख लीजिएगा। अथर्व ने नामे अपना सिर हिलाते हुए कहा, ओके फाइन, मैं नेक्स्ट मंडे तक इस कॉन्ट्रैक्ट को तुम्हारे हिसाब से चेंज करवाकर तुम्हें दे दूंगा, थैंक्स। इप्सिता ने धीरे से अपना सिर हिलाया और वो चुपचाप उसके केबिन से बाहर निकल गई। अथर्व ने अपने दोनों कंधे उचकाते हुए कहा, इप्सिता से मैंने ऐसे बिहेव किया तो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी, वैसे शायद मैं भी कल ओवर रिएक्ट कर गया था, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था, कहीं इसे मुझ पर शक हो गया तो? इप्सिता चुपचाप अथर्व के केबिन से बाहर निकली और सीधे शूटिंग रूम की तरफ चली गई जहां पर पहले से ही ध्रुव उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही ध्रुव ने इप्सिता को देखा तो उसने उससे कहा, कल नंदिनी बता रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, क्या हो गया था? इप्सिता ने ध्रुव की बात का जवाब देते हुए कहा, कुछ नहीं बस थोड़ा सा हेडेक था। ध्रुव ने उसकी बात सुनकर उससे पूछा, तो आप कैसी हो, तुम्हारा सिर दर्द तो ठीक है ना, शूट कर पाओगी? इप्सिता ने कहा, आई एम टोटली फाइन। ध्रुव ने एक्साइटेड होते हुए कहा, ओके फाइन, कम ऑन जल्दी से ड्रेसअप होकर आओ, हम तुरंत शूट स्टार्ट करते हैं।
इप्सिता ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो सीधे ड्रेसिंग रूम के अंदर गई और अपने कपड़े बदलने लगी। थोड़ी ही देर में इप्सिता एक बहुत ही प्यारी सी लॉन्ग सिल्वर ग्लिटरी ड्रेस पहनकर आई, जो कि बहुत ही ज्यादा शाइन कर रही थी, और वहां का पूरा सेटअप भी डार्क था, जिसमें उसकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही थी। ड्रेस पहनकर वो आई और ध्रुव उसके साथ शूट करने में बिजी हो गया। इप्सिता अपने काम को लेकर बहुत ही सीरियस और प्रोफेशनल थी, इसलिए कुछ देर के लिए बाकी सारी बातें भुलाते हुए वो अपने काम पर फोकस करने लगी और पोज देने लगी। इस वक्त उसका बस एक ही मकसद था कि वो अच्छे से पोज करे ताकि काफी अच्छी फोटोज और वीडियो आए, क्योंकि ये एड शूट के लिए था और ये आउटफिट भी स्पॉन्सर्ड था। ध्रुव भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था, वो हमेशा ही उसे इम्प्रेस रहता था, लेकिन आज वो काफी ज्यादा अपने काम में खोई हुई लग रही थी। और ध्रुव को भी पसंद था जब वो ऐसे पैशनेट होकर सिर्फ काम पर ध्यान देती थी। जब वो दोनों ही फोकस रहते थे और पूरा ध्यान अपने काम पर लगाते थे तो उनका काम भी जल्दी हो जाता था। वहीं दूसरी तरफ
उदयपुर के राजमहल में अभिनव अभी तक अपने कमरे में था और काफी गहरी नींद में सो रहा था, क्योंकि कल रात उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था और अलग अलग तरह के प्लान बना रहा था। तभी पल्लवी नरेंद्र के साथ उसके कमरे में आई और उसे उठाने लगी। वो काफी गहरी नींद में सो रहा था। जैसे ही नरेंद्र कमरे के अंदर आया, उसने अभिनव को आवाज लगाते हुए कहा, अभिनव बेटा उठो। अभिनव ने जब नरेंद्र की आवाज सुनी तो वो ब्लैंकेट को मुंह से हटाते हुए बोला, सोने दो ना मुझे, क्यों परेशान कर रहे हो। पल्लवी अभिनव की बात सुनकर बड़ी हैरानी से नरेंद्र की तरफ देखने लगी। नरेंद्र ने अभिनव के पास आकर उसके ऊपर से ब्लैंकेट खींचते हुए कहा, अभिनव बेटा आप टाइम देखो क्या हो रहा है, आप इतनी देर तक नहीं सो सकते। नरेंद्र की ये बात सुनकर वो चिल्लाते हुए बोला, क्यों नहीं सो सकता मैं, तुम होते कौन हो मुझे नींद से जगाने वाले, चले जाओ मेरे कमरे से बाहर। नरेंद्र को उसकी बातें सुनकर बड़ा गुस्सा आ रहा था। तभी उसने अभिनव का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती उठाते हुए कहा, हमने कहा उठो और चलो हमारे साथ, सब ब्रेकफास्ट करने के लिए आपका वेट कर रहे हैं। अभिनव ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं तो उसने अपने सामने पल्लवी और नरेंद्र को देखा और वो अपने सिर पर हाथ मारते हुए बोला, मुझे लगा मैं अपने घर में सो रहा हूँ, लेकिन मैं तो भूल गया था मैं तो यहाँ पर हूँ। नरेंद्र ने जैसे ही उसकी बात सुनी उसने पल्लवी की तरफ देखा और पल्लवी ने बड़े ही प्यार से अभिनव के पास आकर कहा, कोई बात नहीं बेटा, अभी आपको आदत नहीं है ना, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, और वैसे भी अब तो आपको हमेशा यहीं रहना है। पल्लवी की ये बात सुनकर अभिनव ने उसकी तरफ देखकर बेमन से मुस्कुराते हुए अपने मन में कहा, यहाँ और सारी जिंदगी, कैसी बात कर रही है ये आंटी। अभिनव ये सारी बातें अपने मन में बोल रहा था, तभी नरेंद्र ने कहा, 10 मिनट में रेडी होकर नीचे आइए। अभिनव ने कहा, ठीक है आता हूँ। इतना बोलकर वो चुपचाप वॉशरूम में चला गया। जब वो वॉशरूम से बाहर निकला तो उसने कहा, सारी जिंदगी तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ दिन तो मुझे यहाँ पर रहना ही होगा। चलो खैर, जहाँ इतने दिन वहाँ थोड़े दिन और सही, उसके बाद तो यहाँ का सारा खजाना लूट कर तो अपनी ऐश है। इतना बोलकर वो फटाफट तैयार हुआ और सीधे डाइनिंग टेबल के पास आया। उसने देखा वहाँ पल्लवी, नरेंद्र, कियारा, अदिति सब लोग बैठकर चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, पल्लवी ने उसे देखकर कहा, आओ बैठो अभिनव। अभिनव उन लोगों के साथ बैठकर नाश्ता करने लगा। तभी अभिनव की नज़र सीढ़ियों से उतर कर आती हुई मासा पर पड़ी, जिन्होंने हमेशा की तरह ही लेमन येलो कलर की साड़ी और साड़ी से मैचिंग की येलो पर्ल की मोतियों की माला अपनी गर्दन में पहन रखी थी। उनके बालों का जूड़ा बांधा हुआ था और वो बिल्कुल अपने रानी सा वाले अवतार में उतरकर नीचे आईं और सीधे अपनी बड़ी सी आराम कुर्सी पर आकर बैठ गईं। नरेंद्र और पल्लवी की नज़र भी मासा की तरफ गई और उनको देखकर नरेंद्र गुस्से से उन्हें घूरने लगा और वो अपनी कुर्सी से उठकर जाने लगा।